नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रशांत, आपको भी और सुनने वालों को भी।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी, पाकिस्तान और यूएई ने अपने अपने मुकाबले जीते। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी में किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, पहली बार फाइनल में जगह बनाई। भारत ने दुबई ग्रां प्री फजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स में कुल 43 पदक अपने नाम किए और दिल्ली लॉन टेनिस संघ ने किया भारतीय टीम को सम्मानित। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम विश्व कप से, अहमदाबाद में, जहां विश्व कप का मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 4 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। बेहतरीन प्रदर्शन किया है नीदरलैंड्स ने भी इस मुकाबले में।
देखिए, नीदरलैंड के बारे में ये बताना चाहूंगा कि एसोसिएट सदस्य है, नए हैं, जैसे पहली बार इटली खेल रहा है
जी।
ऐसे पिछली बार भी इन्होंने जो ओडीआई वर्ल्ड कप था 2003 का, उसमें कमाल किया था। आर्यन दत्त, जिन्होंने कि आज अभिषेक शर्मा को बोल्ड किया है, लंबे कद के खिलाड़ी हैं और ऑलराउंडर हैं। और 10वीं पोजीशन पर उन्होंने 9, मुझे याद है, 9 गेंदों पर 23 रन बनाए थे, 3 छक्के लगाए थे। तो ये ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं, ये हॉकी से मोटिवेटेड है। हालांकि ज्यादा लोग नहीं है, 100-150 लोग खेलते होंगे हॉलैंड में, लेकिन जो भी करते हैं मेहनत से करते हैं। हॉकी खेली जाती है वहां, फुटबॉल खेली जाती है। और मुझे याद है कि 1996 अटलांटा ओलंपिक से पहले हॉकी में कहीं नीदरलैंड का नाम नहीं था, उसके बाद लगातार उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये टीम तैयार हो रही है, लंबे कद के खिलाड़ी, जज्बे वाले हैं, तो अच्छा प्रदर्शन। पता है कि भारत पहुंच चुका है, वो आउट हो चुके हैं, लेकिन एक प्राइड के साथ वापस जाना चाहते हैं वो, तो अच्छा प्रदर्शन किया है
जी। भारत पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे आपने बताया नीदरलैंड्स के बारे में, जो एसोसिएट नेशंस है, जो इस बार जो T20 में क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हम एक दीपेंद्र सिंह की बात कर ले, आलिशान सुरूफ की बात कर ले, युवराज ने शतक लगाया, सैडली वैन है जो सर्वाधिक 13 विकेट ले चुके हैं, माइकल लिस्क है स्कॉटलैंड के जो दूसरे नंबर, क्या बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बैटिंग का देखा जाए तो इस वक्त जो टॉप के 15 हैं उनमें सिर्फ एक ही है, भारत के ईशान किशन
जी।
और एसोसिएट देशों के 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने टॉप 15 में जगह बनाई, और टॉप में 110 जो व्यक्तिगत सबसे बड़ा स्कोर, वो कनाडा के युवराज सिंह समरा का है। तो आप ये देखिए, और शनले जैसा आपने जिक्र किया 13 विकेट लिए, वो भी टॉप पर है
जी।
तो 9 विकेट माइकल लास्क ने लिए, वो दूसरे नंबर पर है। तो ना भारत के गेंदबाज ना भारत के बैटर पहले 15 में बहुत कम आते हैं। तो वरुण अक्षर ने जरूर 6-6 विकेट लिए थे, तो ये भारत के लिए एक बार अच्छी बात भी है और सही नहीं भी है। अच्छी इसलिए है कि पूरी टीम बराबर का प्रदर्शन कर रही है
जी।
कुल मिला के कोई एक नहीं चलता तो दूसरा चलता है। अगर वर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा नहीं चला तो वर्मा जी का चल जाता है, वर्मा जी के नहीं तो दुबे जी आज चल रहे हैं, तो कोई ना कोई स्टैंड ले लेता। पिछली बार सूर्य कुमार यादव अकेले ने ही शानदार तरीके से रन बनाए था, और ईशान किशन ने अकेले ने 70 रन बना दिए, जो उनका मुकाबला था पाकिस्तान के विरुद्ध। तो मैं समझता हूँ बैलेंस, बाकी टीमों में एक या दो खिलाड़ी होते हैं। आज जैसे पाकिस्तान जीता है तो साहबजादा फरहान उन्होंने जरूर शतक बनाया, लेकिन बाकियों का सहयोग नहीं मिल पाता, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बैटिंग हो। भारत का बैलेंस चल रहा है, लेकिन एसोसिएट सदस्य उन्होंने दिखा दिया कि आने वाला कल उनका है
जी। लौटते हैं मुकाबले पर। जनरली हम अभिषेक शर्मा की लगातार बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ईशान किशन हो गए, लेकिन शिवम दुबे जो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते, अंडररेटेड कह ले हम उन्हें, 2024 विश्व कप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन किया, इस विश्व कप में भी बल्लेबाजी से हर मैच में छोटे छोटे नॉक, इम्पैक्टफुल नॉक खेले उन्होंने, और गेंद से भी विकेट दिला रहे।
अंडररेटेड नहीं है
जी।
प्रॉब्लम यह है कि भारतीय सिलेक्टर के पास की बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, एक खिलाड़ी अगर थोड़ी देर एक दो मैच में नहीं चलता तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार बैठा है। तो कई बार ये अंदर बार इसलिए हो जाते हैं कि अवेलेबल भी नहीं होते, इंजर्ड भी होते हैं। ईशान किशन देखो इंजर्ड था, टीम में वापसी करी तो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जिसको मौका मिलता है दोनों हाथों से ग्रैब कर रहे हैं, और आजकल जो टीम के अंदर आने के लिए नॉक नहीं करते, दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहे हैं। तो ये भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ है, बाकी देशों के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। आप देखिए हॉलैंड के 35-35, 40-40 साल के खिलाड़ी खेल रहे हैं
जी।
पाकिस्तान के कितने खिलाड़ी बहुत सालों से खेल रहे हैं, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है
जी।
तो क्योंकि डोमेस्टिक सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया के पास क्यों आ जाते थे? बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की टीम एकदम लगाकर खेलती थी। इस बार वो पिछले लगातार तीन मुकाबलों में टी20 विश्व कप में वो आगे नहीं बढ़ पाई और इस बार तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। तो सोचने की बात है, क्योंकि उनके पास इस बार हेजलवुड नहीं थे, उनके मिचेल स्टार्क संन्यास ले चुके हैं, इसके अलावा उनके पैट कमिंस नहीं थे। तो ये बदलाव का दौर चलता है, भारत ने बहुत बदलाव के दौर देखे हैं, नया टैलेंट आ रहा है, तो मैं समझता हूं कि भारत संभल गया है। 2023 का विश्व कप आपको याद होगा, भारत जब फाइनल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हारा था ऑस्ट्रेलिया से, उससे पहले एक भी मैच नहीं जीता था, सभी दुआ कर रहे थे, पहले तो हवन करते हैं कि जीत जाएं, उस वक्त लोग दुआएं कर रहे थे, हवन कर रहे थे कि एक आधा मैच हार जाए ताकि फाइनल में झटका ना लगे। तो नॉकआउट में झटके नहीं लगने चाहिए, लीग मुकाबलों में थोड़ा बहुत चलता है, टेस्टिंग हो जाती है सबको, सबका परख लेते हैं कि कितने वो दम में है। कभी हर्षदीप ले लिया, कभी उसको मौका मिल गया, जसप्रीत बुमराह को बिठा दिया गया बाहर, अब वाशिंगटन सुंदर को आज लिया गया, अक्षर पटेल बाहर है, जबकि अक्षर पटेल ने वरुण के साथ मिलकर 6 विकेट लिए। तो जिसको मौका मिलता है वो मौका ग्रैब करने की कोशिश करता है, और यहां भारत की टीम इस वक्त मजबूत टीम है। डर है तो साउथ अफ्रीका से, उसको डर है तो न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, ये टीमें भारत को आगे चलकर दिक्कत दे सकती है। हालांकि भारत को जो मुकाबले खेलने हैं सुपर 8 में वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज, सो दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज से भारत को बचना होगा।
जी बिल्कुल, और कप्तान की अगर हम बात कर ले, जनरली हम देखते हैं सूर्य कुमार यादव विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, 2025 अच्छा नहीं रहा था उनके लिए, लेकिन फिर उन्होंने पिछले न्यूजीलैंड श्रृंखला में अच्छी वापसी की, अच्छी स्ट्राइक रेट भी थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब तक हाथ नहीं खोल सके। अमरीका के खिलाफ तो जो परिस्थिति थी उसमें तो उन्हें उस एंकर का रोल निभाना ही था, लेकिन उसके अलावा भी सारे मैच में एंकरिंग ही करते नजर आए।
देखिए सबसे बड़ी बात यह कि वो एक कप्तान है, उनके कंधों पर बहुत से बोझ है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है उनको, तो बैटिंग तरफ ध्यान नहीं दे पाते। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर कप्तान बने थे, वो उनकी बैटिंग ऑफ हो गई, जैसे उन्होंने कप्तानी छोड़ी ऐसे विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी, वापस फॉर्म आ गई। सो कप्तानी का जो दबाव होता है वो केवल भारत नहीं दुनिया के हर देश के खिलाड़ियों के ऊपर होता है, तो फर्क है। लेकिन कहते हैं ना कि जो क्लास होती है वो परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है, जब जरूरत पड़ती है तो उन्होंने दिखा दिया रन बनाकर कि हाँ, अगर कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी है तो मौका पड़ने पर वो भी खेलेंगे।
जी बिल्कुल, और वहीं पाकिस्तान ने आज खेले गए मुकाबले में नामीबिया को 102 रन से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 199 रन बनाए, जवाब में नामीबिया की टीम 97 रन पर ही सिमट गई। साहिब जादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, अच्छा प्रदर्शन किया पाकिस्तान ने, डोमिनेट करके खेला है ये मुकाबला।
देखिए टीम कमजोर थी सामने, टीम पाकिस्तान की भी कमजोर है बाकियों के मुकाबले, लेकिन ये थोड़ा सा प्राइड के साथ जीतना उनको जरूरी था, उनके लिए करो या मरो की स्थिति थी। अगर वो हार जाते तो फिर नेदरलैंड और नामीबिया के बीच नेट रन रेट देखा जाता, पाकिस्तान बाहर हो सकता था, लेकिन आज उनको मस्ट विन था, जीतना था और वो जीते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुझे 1992 का ओडीआई विश्व कप याद आ रहा है, पाकिस्तान लगभग बाहर था और वहां पर एक गेंद पर 22 रन बनाने का टारगेट मिला डकवर्थ लुईस सिस्टम के मुताबिक, वो था न्यूजीलैंड को मिला, शायद न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड था, साउथ अफ्रीका आया ही था, तो वो नहीं बना सके। पाकिस्तान भाग्य के सहारे अंदर आया, अंदर आने के बाद आगे चला और उसके बाद इमरान खान साहब की कप्तानी में वो चैंपियन बन के निकला। तो पाकिस्तान धीरे धीरे डीजल इंजन की तरह गर्म हो रहा है, आगे जो मैच है अब वो संभल कर खेलेगा, कोशिश करेगा। खिलाड़ियों में प्रतिभाएं हैं, लेकिन एक उनका डोमेस्टिक सिस्टम नहीं है, एक उनको पीछे से सपोर्ट नहीं जितनी भारतीय खिलाड़ियों को सपोर्ट है, क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, ट्रेनिंग मिलती है, खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलती है, नई प्रतिभाएं सामने आती हैं, और वुमेन्स क्रिकेट देख लीजिए अभी जीती है वर्ल्ड कप, तो क्यों? क्योंकि भारत के पास बहुत कुछ है, और कहते हैं ना माया राम अगर हो आपके पास तो बाकी सब चीजें सुधर जाती हैं, बाकी कंट्रीज के पास ये नहीं है, इसलिए भारत डोमिनेट कर रहा है।
जी बिल्कुल, और वहीं एक और मुकाबला आज खेला गया, दक्षिण अफ्रीका ने आज ग्रुप डी के मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को 6 विकेट से हराया, यूएई के 123 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 14वें ओवर में 6 विकेट रहते ही हासिल कर लिया। कॉबिन वॉश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, कॉबिन वॉश ने 12 रन देकर 3 विकेट लिए। और हम अफगानिस्तान के मुकाबले की बात करें तो जो डबल सुपर ओवर हुआ था, ऐसे मुकाबले को जीतने के बाद क्या मानसिकता बढ़ी होगी उनकी?
निश्चित तौर पर, आप ये देखिए कि शुरुआत में 10-11 मैचेस तक तो कोई शतक बना ही नहीं, अब शतक ही शतक बन रहे हैं, जिसके हाथ आ रहा है वो शतक बना रहा है, तो धीरे धीरे टूर्नामेंट खुल रहा है। और डबल ओवर जो डबल सुपर ओवर हुआ था वो कमाल था, इटली ने कमाल दिखाया है, या जिम्बाब्वे ने किस तरह से श्रीलंका ने शतक बनाया और ऑस्ट्रेलिया को बार कर दिया, तो बहुत से बड़े उलटफेर हो रहे थे। एक बार तो नेपाल भी ले गया था इंग्लैंड को शुरुआत में, अगर आपको याद होगा, तो ये एक शानदार अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है क्रिकेट को, और जो एसोसिएट जो टीमें होती है उनके पास खोने को कुछ नहीं होता, सीखने को बहुत कुछ होता है, और उनको कोई सीरीज तो कोई उनको खिलाता नहीं, ऐसे बड़े बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट में उनको बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलता है, तो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। और जो ऑलरेडी सदस्य हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाते हैं, वो थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसका नतीजा देख लीजिए आप।
जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो चाहे भारत की टीम हो, इतना अच्छा प्रदर्शन करने का कारण है कि उनका डोमेस्टिक सर्किट जो वो काफी स्ट्रेंथन है, और आज ऐसा ही कुछ प्रदर्शन रणजी ट्रॉफी में भी हुआ है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में जम्मू कश्मीर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज जम्मू कश्मीर ने बंगाल को 6 विकेट से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड कल्याणी में खेले गए रणजी ट्रॉफी मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। बंगाल की टीम ने सुदीप कुमार के 146, कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन के 49, शहबाज अहमद के 42 और सुमंता गुप्ता के 39 रन की बदौलत पहली पारी में 328 रन बनाए। जम्मू कश्मीर के लिए आकिब नबी ने 5, सुनील कुमार ने 3 जबकि युद्धवीर सिंह ने और आबिद मुश्ताक ने 1-1 विकेट लिए। जवाब में जम्मू कश्मीर की पहली पारी 302 रन पर सिमट गई और बंगाल को 26 रन की बढ़त मिली। अब्दुल समद ने सर्वाधिक 82, कप्तान पारस डोगरा ने 58 और आकिब नबी ने 42 रन की पारी खेली। बंगाल की ओर से मोहम्मद शमी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट लिए। बंगाल की दूसरी पारी महज 99 रन पर ही सिमट गई। आकिब नबी और सुनील कुमार ने 4-4 विकेट लिए जबकि आबिद मुश्ताक ने 2 विकेट लिए। जीत के लिए 126 रन के लक्ष्य को जम्मू कश्मीर ने 4 विकेट रहते हासिल कर लिया। आकिब नबी को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर द मैच चुना गया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
वहीं लखनऊ में पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक और उत्तराखंड के बीच मुकाबला जारी है। पहली पारी में कर्नाटक ने 736 रन बनाए, जवाब में उत्तराखंड की टीम 233 रन पर ही सिमट गई। दिल्ली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के दौरान दिल्ली लॉन टेनिस संघ ने भारतीय टीम को सम्मानित किया है। संघ ने भारतीय टीम को डेविस कप में नीदरलैंड पर शानदार जीत दर्ज करने पर सम्मानित किया। भारत ने इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में एक रोमांचक मुकाबले में 6 रैंकिंग वाली नीदरलैंड को 3-2 से हराकर सितंबर में होने वाले क्वालिफायर के लिए के दूसरे दौर में जगह बना ली है। बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसी का परिणाम है कि आज उन्हें सम्मान दिया जा रहा है।
देखिए, ऐसा है, सम्मान मिलना चाहिए और उससे प्रोत्साहन मिलता है खिलाड़ी को। और सबसे बड़ी बात, चाहे बैडमिंटन हो, टेनिस हो, ऐसे खिलाड़ी अब नहीं आ रहे जिनके कारण भारत का लेवल ऊंचा हो। तो मैं समझता हूं कि जो बैकअप चाहिए था वो बैकअप इनमें अभी नहीं है। बैडमिंटन में भी काफी समय से कोई वुमेन्स की प्लेयर सामने नहीं आ रही, मेन्स के बहुत कम आ रहे हैं, लक्ष्य सेन आए थे वो ऑफ चल रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि अच्छा प्रदर्शन किया है, मोटिवेशन मिला है, उनको सम्मानित किया गया, दूसरे नए खिलाड़ियों को भी इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।
जी, और उधर दिल्ली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में कल नितिन कुमार सिन्हा और एसडी प्रज्वल देव का सामना प्रुचा इसारो और निकी कालियांडप होने जैसे होगा। ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला दोपहर 2 बजे से होगा। वहीं एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिमितार कुजमानोव और डेनिस योवसेव का सामना दिविज शरण और करण सिंह से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सुमित नागल का सामना फेडरिको सिनो से होगा। भारत ने दुबई ग्रां प्री फजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 43 पदक के साथ शीर्ष पर रही। हॉकी इंडिया FIH मेंस प्रो लीग 2025-26 के होबार्ट राउंड के लिए 24 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। ये राउंड 20 से 25 फरवरी तक होबार्ट के तस्मानिया हॉकी सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस स्टेज में भारत के साथ स्पेन और होस्ट देश ऑस्ट्रेलिया शामिल है। कैसा रहेगा भारत के लिए प्रतियोगिता?
बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार एशियन गेम्स भी है और विश्व कप भी है हॉकी का। तो हॉकी के जो नए खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है, जैसे हरमनप्रीत सिंह नहीं खेल रहे क्योंकि पर्सनल कारणों से, और हार्दिक सिंह को कप्तानी दी गई, तो मैं समझता हूं कि एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि जो डोमेस्टिक लेग थी उनकी काफी खराब गई, लेकिन वहां थोड़ा सा कंपटीशन मिलेगा और इसकी तैयारी कही जा सकती है एशियन गेम्स और विश्व कप की।
जी, और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए हैं। शिवम दुबे 60 रन और हार्दिक पांड्या 30 रन बनाकर मौजूद हैं।
और 70 रन की साझेदारी होगी 5वें विकेट के लिए, तो अच्छा स्कोर है मैं समझता हूँ।
अच्छा स्कोर है और मुश्किल नहीं होगा भारत को बचाना?
नहीं, आराम से मैच निकाल के ले जाएगा भारत। जी, भारत के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बुमराह, अर्शदीप, वरुण, सुंदर और हार्दिक।
जी, और श्रोताओं अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। कुलविंदर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।